Thank you. Thank you. Thank you. हर्षं निर्वपामि
Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
काल पूजा ते काल वंदना करे करावई भावना भावई श्री अनंत जी तिथि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर साधु जी पंच परमेश्वर प्यो नमः प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोगे प्यो नमः दर्शन शुद्धादि षोडशाणे प्यो नमः उत्तम समाधि दश लक्षणिक धर्मे प्यो नमः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्यो नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः विजय क्षेत्र में विद्यमान विस्तेभ्यो नमः पांच वर्ष पांच ऐरावत दस क्षेत्र संबंधी 324 के 720 जिन राजेभ्यो नमः नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालयभ्यो नमः पंचमेध संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः सम्मेलित शिखर कैलाश गिरी गिरनार चंपापुरी पावापुरी आदि सिद्ध क्षेत्र हस्तिनापुर अयोध्या राज्य तारंगा चमत्कार जी श्री महावीर जी पद्मपुर जी तिजारा जी आदि अतिशय क्षेत्र नमः तिचारण रिद्धिधारी सप्तऋषि नमः ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपालवंतम श्रीवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाध्यानम आदि जम्बूदीपे भरे क्षेत्र आर्यखंडे झालर पाटन नामनी नगरे माता नमोत्तमाशय साढ़ मासे शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे तिथि वासरे मुनि आरिका नाम सावक साविका नाम शुल्लक शुल्लिका नाम सकल कर्म श्रेयार्थम मार्गम निर्वाण की
भगवान की जय शांति नाथ मुक्त संयम हारी शील गुणावत संयम धारी सकल एक तो आठ विराजे निरगत नयन कमल धन नयन कमल धन लाजे पंचम चक्रवर्ती पद
मैंने तेरे ही भरोसे शांति
नाथ हराए नाथ तुभ्यं नमति शीतलामल भूषणाय तुभ्यं नमति जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो आचार्य को विनय से और में बिठाए मैं पूज्य पाद रज को सिर पे चढ़ाए हे मित्र मोक्ष सब को फलता मिलेगा विश्वास है यह नियोग नहीं चलेगा आचार्य है तरण कारण ज्ञान नार विचार सागर हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला निदा में ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बार बार करती गुरु को नमो बार बार करती विश्वास कमजोर होना अंतरी
त्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ करोड़ मुनि महाराजों की, आज हमारे आचार्य महाराज को 28 वर्ष पूरे हो गए। 28 वर्ष पहले उन्होंने आचार्य पद ग्रहण किया था, अब 29वां वर्ष शुरू हो रहा है। तो ये 29वां आचार्य पद प्रतिष्ठा दिवस कहलाएगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर और मना रहे हैं। जहाँ आचार्य श्री होंगे वहाँ भी लोग इसी तरह से समारोह कर रहे होंगे। अपन ने तो बहुत छोटे से स्तर पर थोड़े से लोगों ने बैठकर और इसको आयोजित किया है, पर मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्यों आज के समय में क्वालिटी की जगह पर क्वांटिटी का प्रभाव ज़्यादा माना जाने लगा है। हम लोग जो है ये देखते हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा समारोह है, थोड़े से लोग हैं तो समारोह छोटा है। नहीं भैया, आचार्य श्री हमेशा कहते, जैसे ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि आपने रात्रि भोजन त्याग करा तो इसको छोटा सा व्रत मान मानो, ये तो भगवान के द्वारा कहा गया व्रत है, इसलिए भगवान के द्वारा कहा है तो सब बड़ा ही है। श्री जी की प्रतिमा चाहे एक अंगुल की हो चाहे 500 धनुष की हो, लेकिन है तो श्री जी ही है, तो भगवान ही तीन लोग के नाथ ही है, और नहीं छोटे से भगवान है, भगवान छोटे नहीं है, तीन लोग के नाथ है, है? तो आज के दिन जो है बहुत बड़े आचार्य महाराज का चूंकि हम समारोह कर रहे हैं इसलिए हमारा समारोह छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा है। वो आचार्य श्री का समारोह है इसलिए बहुत बड़ा है। और आचार्य श्री के बारे में आपसे क्या कहें, उनके अपने जीवन में मैंने शुरू से ही 76 में सबसे पहले आचार्य महाराज के दर्शन किए थे, और तब से आज तक आचार्य महाराज को विभिन्न रूपों में मैंने देखा है। अब उन सब रूपों की मैं आपसे चर्चा करूं तो इतना वक्त भी नहीं है। सैकड़ों रूप हैं और वो उनके अपने जो गुण हैं जो आचार्यों में होना चाहिए, वो सब समय समय पर मैं हर एक गुण का एक उदाहरण दे सकता हूं, आपको एक संस्मरण सुना सकता हूं। इतने सारे उनके जीवन में मैंने देखा है बहुत गौर से, पर अपन संक्षेप में थोड़ी सी बात समझें, वो ये कि आज अगर अपन गौर से देखें तो आचार्य महाराज को आचार्य पद मिला था, ये तो हम मना रहे हैं, पर जो आचार्य महाराज के गुरु थे उन्होंने आज फिर से एक बार शिष्यत्व को अंगीकार किया होगा, ये बहुत बड़ी घटना हुई। एक मुनि आचार्य बने इतना ही नहीं, एक आचार्य ने अपना आचार्य पद का त्याग किया और सरलेखना ग्रहण की, और इतना ही नहीं अपने ही शिष्य को अपना गुरु बना लिया। एक साथ तीन चीजें वहां पर घटित हुई। किसी को आचार्य पद मिलता है तो अकेले आचार्य पद मिल जाता है, लेकिन आचार्य को अकेले आचार्य पद नहीं मिला, जिन्होंने अपना आचार्य पद दिया उन्होंने सरलेखना भी आज के दिन लेने की आज्ञा चाही और साथ में अपने शिष्य को गुरु भी बना दिया। मैं सोचता हूं कि आज गुरुत्व को अंगीकार करने का दिन तो है ही, शिष्यत्व को अंगीकार करने का भी दिन है। और मैं सोचता हूं गुरु बनना ज्यादा कठिन नहीं है, शिष्य बनना सबसे ज्यादा कठिन है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि एक अकेले चलना बहुत आसान है, मनमानी करने की पूरी गुंजाइश है, जैसा चलना वैसा करो, कौन कहने वाला। और अगर किसी के साथ चलो तो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसको ठीक लग रहा है कि नहीं, ये भी फिर भी निर्वाह हो जाएगा। लेकिन किसी के चरणों में अपना माथा रख के चुपचाप उसके पीछे पीछे चलना, ये तो सबसे ज्यादा कठिन है। अपने मन की कोई भी चीज नहीं, अपना मन तो उनके चरणों में रख लिया, वो जो सोचेंगे। आचार्य महाराज कई बार कहते हैं कि अगर कोई उनसे कहे कि हमने ऐसा सोचा है तो फिर ठीक है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं, अब तो वही ने सोच लिया कि हमने ऐसा सोचा है। नहीं, आप अगर आज्ञा देंगे तो हम ऐसा करने का मन बना रहे हैं, नहीं तो हमारा कोई अपनी तरफ से मन नहीं है, हमने तो अपना मन आपके चरणों में रख दिया है। ऐसा शिष्यत्व को अंगीकार करने का आज दिन है। एक आचार्य और गुरु में थोड़ा सा फर्क अपन समझ लें। आचार्यो मृत्युर गुरु ब्रह्मा, ऐसा लिखा एक जगह मैंने पढ़ा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्यो मृत्यु, आचार्य मृत्यु के समान है। तो सचमुच, क्योंकि जिसके निकट पहुंच करके हमारे संसार का मरण हो जाता है वही तो आचार्य है। हमारा संसार अब नष्ट होने को है, संसार का मरण हो गया और फिर वही आचार्य गुरु बन जाता है। तो गुरु ब्रह्मा, जब हम उन आचार्य को अपना गुरु बना लेते हैं तो वो हमें रिकंस्ट्रक्ट करता है। एक जन्म हम माता पिता से लेते हैं, दूसरा जन्म फिर गुरु देना शुरू करता है, वो नए सिरे से हमें बनाना शुरू करता है। इसलिए वो गुरु तो ब्रह्मा के समान है। और जब तक आचार्य के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं अपना सब संसार मिटा सको तो मेरे चरणों में आ जाओ। और विशेषता होनी चाहिए एक आचार्य में, तीन गुण मैं सोचता हूं कि बहुत जरूरी गुरु में, कि वो माँ के समान करुणावान हो। करुणा का अगर कहीं उदाहरण मिलेगा तो माँ के सिवाय नहीं मिलेगा। बेटा कितना ही बिगड़ जावे और रात को 12 बजे और बुरे काम करके भी लौटे तो सामने के दरवाजे से भले ही नहीं घुस पाए, मनोमा पीछे के दरवाजे से आजा जल्दी, पिता को पता नहीं लग जाए और तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, चुपचाप। ये जो एक करुणा भाव है वो माँ के समान उनके भीतर करुणा। और फिर लिखते हैं दूसरी चीज कि एक साधु के समान उनके अंदर शील होना। आचार्य या गुरु के अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो माँ के समान करुणा, दूसरा साधु के समान शीलवान, और तीसरा ज्ञानी के समान प्रज्ञावान। प्रज्ञा और ज्ञान में बहुत फर्क है। ज्ञान तो हम हासिल कर लेते हैं, प्रज्ञा उस ज्ञान को जब आचरण में बदल देते हैं तब अपने भीतर प्रकट होती है प्रज्ञा। विशेष रूप से पढ़नाए घेतव्वो, उस प्रज्ञा की छेनी के द्वारा हम अपने एकत्व विभक्त आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अकेले ज्ञान के द्वारा नहीं। वो जो विवेक पूर्वक ज्ञान हमने हासिल किया है जिसके साथ आचरण भी जुड़ा हुआ है। भैया समयसार की तो गाथाएं और भी लोगों को याद हैं, लेकिन याद होने से नहीं है। जब हम गाथा कहते हैं कि छिज्जद हुआ विज्जद हुआ, ये छिद जाए भिज जाए नष्ट भी हो जाए फिर भी मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये कहना बहुत आसान है लेकिन अनुभव करना ऐसा। तो जो अपने ज्ञान को अनुभव बना लेते हैं वे प्रज्ञावान कहलाते हैं। आचार्य महाराज के पास ये तीनों ही क्वालिटी हैं। मैंने हीरापुर में इस चीज़ को मैंने आपसे पिछले बार कहा था कि मैंने महसूस किया था मैं बहुत अस्वस्थ था और आचार्य महाराज 1 किलोमीटर आगे निकल गए थे और लोग जैसे उनको मालूम पड़ा कि क्योंकि दीक्षा होकर के कुल 2 महीने हुए थे उस समय सनस्ती की बात है, तो वहाँ से आधा 1 किलोमीटर से वापस आए थे और फिर बोले कि क्यों क्या बात है। मैंने कहा थोड़ा पेट में दर्द हो रहा, लाना जरा तेल कहाँ है, वो मंगाया और अपने हाथ से और स्पर्श ही तो किया, अब हो रहा है दर्द, नहीं हो रहा दर्द, चलो तो फिर चलो, फिर 20 किलोमीटर चलना है तो चलो। ये क्या चीज़ है, क्या उन्होंने कोई जादू कर दिया, नहीं, करुणा भाव है। माँ का हाथ जैसे बेटे के सिर पर पड़ जाए तो कितने ही थका हारा हो कितने ही तकलीफ में हो वो अच्छा महसूस करता है। इसी तरह जो है आचार्य महाराज भी माँ के समान जो है अपने शिष्यों को सहारा भी देते हैं, लेकिन वे साधु के समान स्वयंशील का आचरण करते हैं और स्वभाव को की तरफ सबका ध्यान। आचार्य महाराज से ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या कहा था, यही कि संघ को गुरुकुल बनाना और अब प्रभावना ना हो इसका ध्यान रखना, प्रभावना करने की चेष्टा मत करना, अब प्रभावना ना हो ये ध्यान रखना बस, और बाकी प्रभावना होती रहेगी, प्रभावना करने की चेष्टा नहीं, अब प्रभावना भर ना हो इस बात का ध्यान रखना। और आचार्य महाराज हम लोगों को जब विहार के लिए भेज रहे थे सबसे पहले, तब उन्होंने क्या कहा था कि देखो अध्यात्म को नहीं भूलना और अपने दीक्षा के दिन के वैराग्य को याद रखना। दीक्षा के दिन जितना वैराग्य होता है, दीक्षा लेने के बाद फिर वो वैराग्य मेंटेन होता रहे, वो बना रहे, बहुत मुश्किल है भैया। परिणामों में कमी आती है, पंचम काल है, हीयमान चारित्र है, वर्धमान चारित्र नहीं है, पर फिर भी बार बार उस चीज को याद करना जिससे कि परिणाम सुधरे रहे। और अध्यात्म वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, इससे बड़ा अध्यात्म और कुछ नहीं होता। हर स्थिति में जो है अपने आप को संयमित रख करके धैर्य पूर्वक जो है अपना जीवन यापन करना, ये अध्यात्म। ये आचार्य श्री के ऐसे वो साधु के समान है, उनके अंदर शील है, और प्रज्ञावान तो आचार्य महाराज हैं ही। मैं प्रज्ञा की बात करूं आपसे, एक संस्मरण है उनके जीवन का कि बिहार करके पहुंचे, बहुत सारे संस्मरण है, लेकिन बस अब जो है वो बहुत देर, फिर हम तो रोज सुनाते हैं आपको और फिर बैठ करके फिर सुना देंगे संस्मरण, एक सुनाए देते हैं बस उतना ही। तो क्या हुआ कि बिहार कर रहे थे, और बिहार करते करते और एक स्थान पर रुकने का हुआ, सब लोग रुक गए, तो आचार्य श्री बड़े आराम से ऐसे बैठे हुए, सब लोग हम लोग पैर दबा रहे हैं। तो आचार्य महाराज बोले मुस्करा करके कि मन तो कर रहा है कि थोड़ा लेट लिया जाए, हैं? तो बस सब तो तैयारी बैठे थे बिल्कुल, उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छा, आप लेटो तो अपन को तो सोने मिलेगा ही। आचार्य श्री ये कहते हैं कि जब मैं खड़े होकर प्रतिक्रमण करूं तो तुम लोग बैठ के करोगे, और मैं बैठ के करूं तो तुम लेट के करोगे। कमी होती चली जाती। तो वो जैसे उनने कहा कि मन तो कर रहा है कि थोड़ा लेट जाए, तो हम लोगों ने समर्थन कि हाँ थोड़ा लेट लें, फौरन जो है अपनी पीछी उठाई। बोले लेकिन आत्मा कहती है कि सामायिक का समय हो गया, सामायिक कर लें, मन की कौन सुने, चलो आत्मा की सुनते हैं, और बस पीछी उठा करके और सामायिक करने बैठ गया। ये कितना बड़ा संदेश था कि मन तो करेगा कि ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन किसकी सुनना, जो प्रज्ञावान होगा, जो वास्तव में ज्ञानवान होगा, ऐसा कोरा किताब का ज्ञान जिसको होगा वो तो कोई ना कोई तर्क दे करके और जैसा करना है वैसा कर लेगा, लेकिन वहां तर्क नहीं, वहां उन्होंने अपने आत्मा की बात सुनी, और वो प्रज्ञा उनके भीतर है कि वे हमेशा अपने आत्मा की आवाज सुनते हैं और अपने व्रतों को। हम तो 12 बजे अगर कोई हमारे पास आ जावे तो 5-1 मिनट का वो उसने बतियान लगे, मगर आचार्य श्री 12 यानी 12, शाम 6 यानी 6, अपन को तो 10 मिनट 15 मिनट कोई जात, जब चलो बैठा थे सामायिक में, मगर वो ऐसा हमने देखा, कितने ही बड़े मंत्री और प्रधानमंत्री भी उनके पास अगर उस समय आए हैं, सामायिक का समय हो गया यानी हो गया, एक मिनट भी ऐसा नहीं है कि वो अपना सामायिक के समय को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें कि भाई 10 मिनट बाद बैठ जाएंगे, करना ही तो है, घंटा भर कर लें, आधा घंटा बाद सही, लेकिन इस तरह वो अपने आवश्यक अपरिहार्य आवश्यकों को समय से करते, हम लोगों को संदेश भी देते हैं। हम लोग तो कहते जरूर हैं कि हम लोग आज्ञा वाज्ञा बहुत मानते हैं, बहुत नहीं मानते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़ तो करते ही रहते हैं, तो उसी का तो डांट पड़ती रहती है, उसी की डांट पड़ती है फिर जा करके, हैं? तो पर वो तो हमेशा जो है अपने आचरण को और कड़ा रख करके, और थोड़ी देर को तो लगता है, जैसे चुल्लक जी महाराज जी कह रहे थे कि थोड़ी देर को लग, वो बहुत अच्छा उदाहरण मुझे लगा क्योंकि मैं तो आंवला रोज खाता हूँ, और बिल्कुल सच्ची बात है, वो जीभ पर अगर उसको ऐसे रखो तो वो बहुत अटाइंदा लगता, फिर बाद में पानी पी लो तो बड़ा मजा रहता, फिर उसको चला जाता वो अंदर अंदर चला जाता फट से। हमने ये यहीं पर सीख लिया विद्या, पहले वो जाते ही नहीं था और जरूरी था, तो फिर ये बहन बोली यहाँ पर जो तुम्हारे यहाँ दीदी है, तो वो बोली कि पानी पी लो आप इसके ऊपर, एक दिन पिया तो फिर अब तो समझ में आ गया ये अंदर जाने का ये। तो अब ये इससे उदाहरण ले लो अपन कि आज्ञा जो है, आज्ञा कड़वी लगती है, आज्ञा अठाईदी मालूम पड़ती है, ये क्या कर रहे हैं हम, हमको इतनी ऐसी आज्ञा दे रहे हैं, हम पालन करते हैं इसलिए नहीं, लेकिन फिर जब उसको हम चुपचाप ग्रहण कर लेते हैं तो मजा भी आता है, फिर उसका ही तो सुख मिलता है। और काहे का सुख है जिंदगी में, मैं तो सोचता हूँ मुझे तो एक ही सुख अच्छा लगता है कि आचार्य महाराज को जिसमें खुशी है उसमें मुझे खुशी है, उनको मेरे से जो करवाना है वो वैसा आदेश दें और मैं करूँ और उनके कहे अनुसार कर सकूँ, इसमें ही अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ। मैंने घर इसलिए नहीं छोड़ा था मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे आपके बीच और इतनी बातें करता फिरूंगा, अपने ज्ञान को बघारूंगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ईमानदारी से कहूं, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि आचार्य महाराज के चरणों में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। लेकिन उनकी आज्ञा हुई तो आज जो है 14-15 साल से जो है उनकी आज्ञा से ही, पर ललक हमेशा, कितने भी अभी अभी मिलके आए हों फिर भी ललक यही लगी रहती कि जल्दी से बुला लेते और मैं पहुंच जाता उनके चरणों में। सागर में थे आचार्य जी के साथ 2 महीने, बड़ी निश्चिंता रहती है कि तुम कछु भी करो कैसे करो बे बैठे बड़े बाबा, हमारे पास आए तुम वहां जा, इस तरह बड़ी निश्चिंता, गुरु जैसे कि माँ की गोद में जो है बेटे को निश्चिंता मिलती है वैसी ही। और मुझे उनके प्रति श्रद्धा, क्या कहूं मैं आपसे, मैं तो पूरा जीवन ही उनके लिए समर्पित कर चुका, मुझे अपने जीवन में और किसी चीज की आकांक्षा नहीं। यह ख्याति इत्यादि लोगों को लगता जरूर है, मैं भी जानता हूं, मन तक सब देखता हूं कि लगता होगा कि अरे इनको जो है इस सब की आकांक्षा है, लेकिन ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, मेरे मरण के समय ये चीज मालूम पड़ेगी कि इस आदमी को जो है वो किस चीज की आकांक्षा थी। मेरा तो अभी भी विश्वास है, मैं आज आपसे कहूं कि मेरा आखिरी समय आचार्य श्री के चरणों में ही व्यतीत होगा, मेरी संलेखना उनके चरणों में होगी, मुझे ये विश्वास, मुझे ये बहुत विश्वास है। अब मेरे विश्वास की रक्षा भी आचार्य महाराज जी करेंगे, वे मेरे विश्वास की रक्षा जरूर करेंगे कि हाँ मुझे शांतिपूर्वक अपने जीवन को यापन करने के बाद अंतिम परीक्षा में पास हो सकूं। आज उनके इस आचार्य दिवस पर मैं उनके प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए यही भावना करता हूँ कि भगवान हमको उनके चरणों में और अपनी समाधि का अवसर मिले। बोली आचार्य विद्या सागर।